पुस्तक 16वी लेक्चर नंबर 14 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मुनिय परमर्थ विद्धर मुनिवर वीरैः सिद्ध विज्ञेहि जासन्तु आवयवदी वसियौ सुयदेवया मज्जम् सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगो भाव्यो सम्मम् आवहै नाणसिद्धिम् नाणफलम् चाविनिर्वाणम् तो सुदेवयमिनमो तिक्कुत्तोपणमियूणभक्तिये गोक्षामि जहासुक्तम् चारित्रमोहस्य कवणविम्। यह श्री वेसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहु तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चारित्र मोक्ष अपना नाम का 15वां अर्थाधिकार अपना हो चुका है। अभी हम पश्चिम स्कंध देख रहे हैं, पृष्ठ संख्या 154। पश्चिम स्कंध का अर्थ होता है मुनि कर्म का पूरा क्षय हो जाता है और 12वें गुणस्थान की भी कुछ बात बताकर कषाय पहुर पूर्ण हुआ है। अब उसके पश्चात जो प्ररूपणा है वो यहाँ पश्चिम स्कंध में चल रही है, उसमें भी केवली भगवान जो समुद्घात करते हैं उसकी चर्चा चल रही है। समुद्घात के पहले अंतर्मूर्त आवर्जित करण नाम का करण होता है, उसमें क्या होता है तो गुण श्रेणी का जो आयाम है वो छोटा हो जाता है और असंख्यात गुण निर्जरा यानी अधिक और असंख्यात गुण हो जाती है। तो यहाँ अभी हम पहले दंड समुद्घात में हमने देखा था कि केवली भगवान या तो पद्मासन में है या तो खड़गासन में, उत्तर की तरफ मुंह है या पूर्व की तरफ, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, और ऊपर और नीचे वात वाले छोड़कर पूरे दंडाकार उनके प्रदेश फैल जाते हैं। केवली फिर कपाट समुद्घात, दूसरे समय में कपाट समुद्घात होता है तो जो दंडाकार फैले हुए है उसी वीर्थ में वो हॉरिजॉन्टली यानी पूरे ही लोकाकाश के अंत तक वात वाले को छोड़कर वहां तक फैल जाते हैं, उसको कहेंगे कपाट। 154। तो पहले हमने देखे थे दंड समुद्घात में क्या करते हैं, तो जितनी सत्ता थी उसका बहुभाग नष्ट करते हैं स्थिति का। अब यहाँ कपाट समुद्घात में क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे 154 में। यहाँ सूत्र पढ़ेंगे, तम्मी शेषी गाय ठिदिये असंखेज्य भागे हणई। कपाट समुद्घात के काल में शेष रही स्थिति के, दंड के काल में जितनी थी उसका असंख्यात बहुभाग नष्ट हो गया, कपाट अवस्था में वहां जितनी शेष रही है उसके असंख्यात बहुभाग का हनन करता है, हनन करता है कहो या घात करता है कहो, वो स्थिति नष्ट होकर उसके परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं। आगे आते 155 पर, शेषस्य अनुभागस्य अपसत्थानम् अनन्ते भागे हणये। यहाँ पर जितना अनुभाग शेष है ना उसका अनंत बहुभाग यहाँ पर नष्ट होगा, घात होगा उसका। तो कहते हैं अप्रशस्त प्रकृतियों के, उसके लिए एक शब्द डाला अप्रशस्त प्रकृतियों के, क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बिल्कुल ही नहीं होता, वो तो मैक्सिमम पड़ा है अभी सत्ता, वो तो ऐसा ही रहेगा। अप्रशस्त प्रकृतियों के शेष रहे अनुभाग के अनंत बहुभाग का हनन करता है। सुगम होने से यहाँ पर उक्त दोनों सूत्रों में कुछ व्याख्यान करने योग्य नहीं है। यानी ये कार्य एक एक समय में होना हो रहा है, ये यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर भी गुणश्रेणी प्ररूपणा आवर्जित करण के समान है। ये जो गुणश्रेणी की जो वहाँ प्ररूपणा की है वैसे यहाँ पर भी चलेगी। नहीं नहीं, वही जो वहाँ चल रही थी वही कंटिन्यू। इस प्रकार केवली समुद्घात की तीसरी अवस्था विशेष में विद्यमान केवली के स्वरूप का प्ररूपण करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। यानी अभी वो प्रतर नाम है या उसका दूसरा भी नाम है, मंथ नाम है, तो यहाँ कहेंगे यहाँ पर तदो तदीय समय मंथम करेदी। तत्पश्चात तीसरे समय में मंथ नाम के समुद्घात को करता है, जिसके द्वारा कर्म मथा जाता है उसे मंथ कहते हैं। मंथ समझते हैं? मथना के समझते हैं? ये करके दिखा रहे हैं। समुद्र मंथन शब्द आपने सुना होगा, अन्य मत मानते हैं ना, मेरु पर्वत की वो रवई बनाई और वो समुद्र को उन्होंने पूरा मथ डाला और उसमें से क्या क्या निकला। तो यहाँ कहते हैं जिसके द्वारा कर्म मथा जाता है उसे मंथ कहते हैं। अघाती कर्मों के स्थिति और अनुभाग के निर्मथन के लिए केवलियों के जीव प्रदेशों की जो अवस्था विशेष होती है, निर्मथन के लिए मथन मंथ मथा जाता है ऊपर है ना, अनुभाग निम्हण वो प्रतर संज्ञा वाला वह मंथ समुद्घात है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी उसको नाम प्रतर भी है और मंथ भी है। इस अवस्था विशेष में विद्यमान केवली के जीव प्रदेश यानी आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश है, चारों ही पार्श्वभागों से, पार्श्वभाग है ना, चारों ही तरफ से, चारों ही साइड से प्रतराकार रूप से फैलकर। प्रतर किसको मालूम है? मैं मालूम है ना, प्रतर किसको कहते हैं? राजू प्रतर किसको कहें? स्क्वायर है ना, जिसको उल्टी भी है ऐसे लंबाई भी है। जैसे हम घर का कितने, अपना घर कितना बड़ा है कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्षेत्रफल बताएंगे, उसका स्क्वायर फीट बताएंगे। अभी तो कपाट में तो ऐसे फैले थे, अब ऐसे भी फैलेंगे। जिसने पूर्व की तरफ मुंह किया था ना, उनके प्रदेश दक्षिणोत्तर फैले थे। अब ये पूर्व पश्चिम भी लोकाकाश के अंत तक पात वाले को छोड़कर यहाँ फैलेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे, चारों ओर से फैलेंगे तो प्रतर रूप हो जाते। तो प्रतराकार रूप से फैलकर सर्वत्र वात वलय के अतिरिक्त, जो वात वलय के अतिरिक्त कहा है, वात वलय को छोड़कर, वो केवल लोकाकाश के बाहरी वात वलय को छोड़ना। नहीं तो समझे कि प्रत्येक पृथ्वी के नीचे 60-60 हजार योजन के वात वलय, तीन तीन, उसको नहीं छोड़ना है, उसमें तो सर्वत्र फैले है। साइड्स में जो वात वलय थे उनको छोड़ना, पूरे लोकाकाश के प्रदेशों को भरकर, इन्हें वात वलय को छोड़कर बाकी अन्यत्र सर्वत्र फैलकर अवस्थित रहते ऐसा जानना चाहिए। यानी जीव के प्रदेश कहाँ कहाँ फैले? पूरे लोकाकाश में एक्सेप्ट वात वलय, क्योंकि उस अवस्था में केवली के जीव प्रदेशों का स्वभाव से ही वात वलय के भीतर संचार नहीं होता। हम तो निमित्त की ओर देखना चाहते, क्यों नहीं तो कहते ऐसा ही स्वभाव है, यहाँ तक ही फैले है। इसी की प्रतर संज्ञा और रुचक संज्ञा, और भी एक संज्ञा मिल गई, रुचक आगम में रूढ़ी के बल से जाननी चाहिए। यानी उसका वो रूढ़ी का नाम है, प्रतर कहो या रुचक कहो। परंतु इस अवस्था में केवली जिन कारमान का योगी और अनाहारक हो जाता, कारमान का योग है इस अवस्था में। हमने देखा था कपाट में कौन सा का योग था, याद है? मिश्र, औदारिक मिश्र, और यहाँ पर कारमान का योग हो जाता है। और जहाँ कारमान का योग है यहाँ पर अनाहारक है। अनाहारक का अर्थ क्या है? शरीर के परमाणु का ग्रहण यहाँ नहीं होगा तीन समय के लिए, प्रतर लोक पूर्ण और प्रतर लोक, क्योंकि उस अवस्था में मूल शरीर के अवल आलंबन से उत्पन्न हुए जीव प्रदेशों का परिस्पंद संभव नहीं है, तथा उस अवस्था में शरीर के योग्य नौ कर्म पुद्गल पिंड का ग्रहण नहीं होता। अब इसी अवस्था में स्थिति और अनुभाग का पहले के समान घात करता है, इस बात का कथन करने के लिए उत्तर सूत्र अवतीर्ण हुआ है। देखो, समुद्घात करते हैं तो पूरा ही लोक पूरण तक करके वापस लौटेंगे। ऐसा नहीं कि किसी की स्थिति ज्यादा है, किसी की कम है, कोई एक समय का करता है, कोई दो, ऐसा है ही नहीं है। पूरा का पूरा करके फिर नीचे वापस आएंगे। नहीं, आवर्जित कर्म समुद्घात के पहले ही होता है। अभी हाँ, सूत्र पढ़ेंगे। ठिदी अनुभागे तहे व निर्जर, यदि स्थिति और अनुभाग की उसी प्रकार निर्जरा करता है। पहले किस प्रकार देखा था? असंख्यात दो बार स्थिति में, असंख्यात दो बार, और अनुभाग में अप्रशस्त कर्मों का अनंत भोग। स्थिति के असंख्यात भोग का लिखा है यहाँ पर, और अप्रशस्त प्रकृतियों के अनंत भोग का पहले के समान घात करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ पर प्रदेश कुंज की भी उसी प्रकार निर्जरा करता है, यह वाक्य शेष करना चाहिए, क्योंकि आवर्जित करण से लेकर स्वस्थान केवली की गुणश्रेणी निर्जरा से असंख्यात गुणी गुणश्रेणी निर्जरा को गुणश्रेणी निर्जरा की अवस्थित निक्षेप रूप आयाम के साथ प्रवृत्ति की सिद्धि में बाधा नहीं उपलब्ध होगी। लंबा लंबा वाक्य क्या कहते हैं? जब समुद्घात नहीं कर रहे थे उस केवली को कहते स्वस्थान केवली। स्वस्थान केवली जितने प्रदेशों के, जितने परमाणुओं की निर्जरा करते हैं, उससे आवर्जित करण करने वाले केवली असंख्यात गुणा प्रदेशों की निर्जरा करते हैं। ये इसमें से सीधे, और यहाँ भी वही प्रपोर्शन में चलेगा। तो कहते अवस्थित निक्षेप है, उसका जो गुणश्रेणी का निक्षेप है वो उतना का उतना रहता है। जितने निषेकों में गुणश्रेणी रूप से दिया जाता है द्रव्य अपकर्षण करके, उसका प्रमाण सेम रहता है। इस प्रकार यह केवली समुद्घात के भेद का कथन किया। अब चौथे समय में लोक पूरण संज्ञक यानी लोक पूरण नाम वाला समुद्घात को अपने संपूर्ण प्रदेशों द्वारा समस्त लोक को पूरा करके प्रवृत्त करता है। इसका अर्थ है लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश स्थित है। इसका ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। तदो चौथ समय लोगम पूरे दी, तत्पश्चात चौथे समय में लोक को पूरा करता है। वात वलय बात हुआ है, वात वलय से रुके हुए लोकाकाश के प्रदेशों में भी, यानी पहले वात वलय में नहीं फैले थे, अब वात वलय में भी स्प्रेड आउट हो गए, पूरे फैल गए, तो वहां भी जीव के प्रदेशों के चारों ओर से निरंतर प्रविष्ट होने पर, यानी कुछ बीच में अंतर छूटे बिना, लोक पूरण संज्ञक चौथे केवली समुद्घात को यह केवली जिन उस अवस्था में प्राप्त होते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी भी एक जीव के प्रदेश कितने, हम हमेशा कहते हैं कि जितने लोकाकाश में प्रदेश है उतने, जब केवली समुद्घात करते हैं लोक पूर्ण अवस्था में, पूरे लोक में लोक के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश स्थित है, एक जीव का। ऐसे इस विश्व में जीव कितने हैं? अनंत। और प्रत्येक के पास लोकाकाश जितने प्रदेश, और रहते लोकाकाश में क्या है ना, तो कितने एक दूसरे को भी अवगाहना देते हो। यहाँ पर भी कारवाण का योग के साथ यह अनाहरक ही होता है। प्रतर में भी ऐसा ही था, यहाँ पर भी ऐसा है, क्योंकि उस अवस्था में शरीर की रचना के लिए औदारिक शरीर नौ कर्म प्रदेशों के आगमन का निरोध देखा जाता है। यानी ये तीन समय तक ये जो परम औदारिक शरीर संबंधी परमाणु ग्रहण करता है वो नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार लोक को पूरा करके चौथी अवस्था में कारमण कायोग के साथ विद्यमान केवली जिनके उस अवस्था में समस्त जीव प्रदेशों के समान योग के प्रतिपादन करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। लोगे पुण्य एक्का वग्गणा जोगसत्ति समजोगोत्तीन आयोगो। लोक पूर्ण समुद्घात में योग की एक वर्गणा होती है, इसलिए वहाँ समयोग ऐसा जानना चाहिए। एक वर्गणा होती का अर्थ क्या है?
हाँ बोल।
समान अभी तक क्या पोजीशन थी या आपके हमारी क्या पोजीशन है? जितने असंख्यात प्रदेश है हमारे, जिन जिन प्रदेशों में मिनिमम योग है उस जैसे हम कर्मों में देखते हैं ना, उसकी निषेक रचना करते हैं या अनुभव की रचना करते हैं, वैसे आत्म प्रदेशों की हम ऐसी रचना बताएंगे। सभी प्रदेशों में समान योग नहीं होता, मिनिमम योग वाले इतने असंख्यात प्रदेश हैं, फिर उसके ऊपर चय घटते हुए प्रदेशों की रचना करना, उससे एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है योग शक्ति का, उसको रखेंगे, फिर उसके ऊपर उसको रखेंगे, ऐसी अनेक वर्गणा होती है। ये सब योग स्थान में आती है बात, उसकी भी वर्गणा स्पर्धक सब होगी उसके अंदर। जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण एक स्पर्धक में वर्गणा होती है, और ऐसे स्पर्धक भी जगत श्रेणी के असंख्यात भाग होते हैं, तब जाके एक योग स्थान होता है। असंख्यात होगी उनके भी, बिल्कुल होगी। एक समय में सभी समयोग हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं योग की एक वर्गणा होती है। और लोक पूरण में बताया, प्रतर में भी नहीं बताया। लोक पूरण समुद्घात में विद्यमान इस केवली जिनके लोक प्रमाण समस्त जीव प्रदेशों में, अभी समस्त जीव प्रदेश लिए, योग संबंधी अविभाग प्रतिच्छेद वृद्धि हानि के बिना सदृश ही होकर परिणमते हैं। अब तक ऐसा नहीं था, जितने असंख्यात है उसमें अलग अलग योग होता, योग हीनाधिक होता है, सभी प्रदेशों में समान नहीं पाया जाता। हम कहेंगे इसका योग ज्यादा है इसका कम है, फिर भी उसमें ये सब पूरा मिलकर योग स्थान होता है। इसलिए सभी जीव प्रदेश परस्पर सदृश धन रूप से, सदृश धन ने सबकी वैल्यू, सबका अविभाग प्रतिच्छेद सेम है, परिणत होकर एक वर्गणारूप हो जाते हैं। इसलिए यह केवली उस अवस्था में समयोग जानना चाहिए, क्योंकि समस्त जीव प्रदेशों में योग शक्ति के सदृशपने को छोड़कर विसदृशपना नहीं उपलब्ध होता, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और यह समयोग रूप परिणाम सूक्ष्म निगोध जीव की योग संबंधी जघन्य वर्गणा से असंख्यात गुणत्व के योग्य मध्यम वर्गणा रूप से होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये एक वर्गणा है, परंतु वो उसमें योग शक्ति कितनी है, मिनिमम है मैक्सिमम है कितनी, तो सूक्ष्म निगोध में जितनी होती है, जघन्य में जघन्य योग, उससे असंख्यात गुणा वाला विशिष्ट यहाँ पाया जाता है योग। अपूर्व स्पर्धिक की विधि से पहले की अवस्था में सर्वत्र अनुभागों के असंख्यात और अनंत भूभागों का घात करता है, अब यहां योग की बात नहीं चल रही है। अपूर्व स्पर्धक की विधि से, अब इसमें भी अपूर्व स्पर्धक योग में भी लगते हैं एक्चुअली, परंतु यहाँ क्या कहना चाहते हैं पहले पूरा पढ़ लेते हैं। देखो, अपूर्व स्पर्धक की विधि से पहले की अवस्था में सर्वत्र अनुभागों के असंख्यात और अनंत भावों का घात करता है, क्योंकि उसके घात के लिए ही समुद्घात क्रिया का व्यापार होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह अनुभव की बात है, वो स्थिति की होनी चाहिए। ये सब जो समझोग हो गया, अपूर्व पद विहानंद पूर्वत्था सवत्थम अनुभागानम असंख्य ज अनंत भागे घा दे दी। हाँ, परंतु असंख्यात और अनंत ऐसा दो क्यों कहा? क्योंकि उसके घात के लिए ही समुद्घात क्रिया का व्यापार होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। स्पर्धक की अपेक्षा से कहते होंगे शायद, पूरा पढ़ लेते हैं। इस प्रकार इस लोक पुराण समुद्घात में विद्यमान केवली जिन द्वारा स्थिति के असंख्यात भागों के घातित होने पर, यह स्थिति का असंख्यात भाग, असंख्यात भाग घात हुआ, यह असंख्यात दो भाग घात होने से शेष रहा स्थिति सत्कर्मा, बहुत अल्प रूप से स्थित होकर अंतर्मूर्त प्रमाण आयाम वाला होकर स्थित रहता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। यानी लोक पूर्ण होता है तब उसका अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति रह जाती है, ये बात बताएंगे अभी। लोगे पुण्य अंतोमूर्तम ठिदिम ठवेदी, यह सूत्र सुगम है। लोक पुराण समुद्घात में कर्मों की स्थिति को अंतर्मूर्त प्रमाण स्थापित करता है, यह सूत्र सुगम है। अब क्या यह अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति आयु कर्म की स्थिति के समान है या संख्यात गुणी है या अन्य प्रकार की है, इस आशंका के होने पर निशंक करने के लिए इस सूत्र को करते हैं।
उसके पहले उसकी स्थिति तो असंख्यात नहीं होती, क्योंकि असंख्यात बहुभाग का घात करके खाली अंतर्मूर्त प्रमाण सूची
बताया था उन्होंने पहले की असंख्यात विभाग होती है, पहले बता चुके ना। अब कहते यहाँ पर जो अंतर्मूर्त बताया है तो यहाँ की जितनी आयु की स्थिति है उससे ये अंतर्मूर्त वाला बड़ा है कि छोटा है कि कितना है कि संख्या गुणा है, तो कहते संख्या जो गुणम आऊ आदो, शेष अघाती कर्मों की स्थिति आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुणी है। यानी वो आयु कर्म भी अंतर्मूर्त वाला बाकी है और ये उससे बड़ा अंतर्मूर्त है संख्यात गुणा वाला। इस समय भी आयु कर्म की स्थिति के समान इन अघाती कर्मों का स्थिति सत्कर्म नहीं होता है किंतु उससे संख्यात गुणा ही होता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। यहाँ इस विषय में दो उपदेश पाए जाते हैं। कितने ही आचार्य कहते हैं शंका, वह कैसे वर्ष के ऊपर बिंदी लगाना शंका, उसका समाधान महावाचक आर्यमंक्षु क्षमन श्रमण के उपदेश के अनुसार, श्रमण कहो श्रमण कहा उन्होंने श्रमण श्रमण कहते हैं ना, श्रमण भी कहते हैं खमणानम। तो महावाचक, अभी वाचक और ये वो सब संज्ञाएं हैं ग्रंथ लिखने वालों की अपेक्षा से, हमने पहले देखे थे आर्यमंक्षु उनका नाम है मुनिराज का, उनके उपदेश के अनुसार लोक पूर्ण समुद्घात के होने पर आयु कर्म की स्थिति के समान नाम गोत्र और वेदनीय कर्म का स्थिति सत्कर्म स्थापित करता है। यानी उनके मत के अनुसार तभी हो जाता है। महावाचक नागहस्ती क्षमण के उपदेश के अनुसार, ये नागहस्ती नाम के दूसरे आचार्य, लोक पूर्ण समुद्घात होने पर नाम गोत्र और वेदनीय कर्म का स्थिति सत्कर्म अंतर्मूर्त प्रमाण होता है, इतना होता हुआ भी आयु कर्म की स्थिति से संख्यात गुणा स्थापित करता है। परंतु यह व्याख्यान संप्रदाय चूर्णी के विरुद्ध है, क्योंकि चूर्णी सूत्र में स्पष्ट रूप से ही आयु कर्म की स्थिति से शेष अघाती कर्मों की संख्यात गुणी निर्दिष्ट की है, इसलिए प्रवाह्यमान उपदेश यही प्रधान रूप से अवलंबन करने योग्य है, अन्यथा सूत्र के प्रतिनियत होने में आपत्ति आती है। यानी यहाँ संख्यात गुणा है ऐसा मान लेना चाहिए। इस प्रकार इन दंड कपाट प्रतर और लोकपूर्ण समुद्धातों के स्वरूप विशेष का और वहां किए जाने वाले कार्य वेदों का निरूपण करके अब इसी अर्थ को उपसंहार रूप से स्पष्ट करते हुए आगे के दो सूत्रों को कहते हैं। एदेशु चतुष समयेषु अपसत्थ कम्मं साणम अनुभागस्य अनुसमय उवट्टना। यहाँ क्या क्या हुआ उसको फिर दोहराते हैं। केवली समुद्घात के इन चार समयों में अप्रशस्त कर्म प्रदेशों के अनुभाग की अनुसमय अपवर्तना होती है। अनुसमय ने प्रति समय, क्योंकि इन चार समुद्घात के समयों में अप्रशस्त कर्मों का प्रति समय अपवर्तनाघात अनंतर कहे गए अनुभाग के वश से स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। अनंतर ने अभी भी जो बताया था उसके अनुसार प्रति समय वो अनंत गुणा घटता है। एक समय ठिदिखंडयस्य घातो तथा एक समय वाला स्थिति कांडक घात होता है। स्थिति का कांडक घात तो होता है परंतु अभी तक कैसा है, अंतर मुहूर्त में होता था, अभी एक एक समय में पूरा ही कांडक घात हो जाता है। चारों ही समयों में प्रवृत्तमान यानी होने वाला स्थिति घात एक समय के द्वारा ही संपन्न हो जाता है। यह अनंतर ही कहे आए, ये अभी अभी कह चुके हैं। इसलिए आवर्जित करण के अनंतर इस प्रकार के केवली समुद्घात को करके नाम गोत्र और वेदिनी कर्मों की अंतर्मूर्त आयाम रूप से स्थिति को शेष रखता है। इस प्रकार यह अतिक्रांत समस्त सूत्र प्रबंध का समुदाय रूप अर्थ है। अतिक्रांत ने अभी जो बता चुके हैं सभी सूत्रों का ये तात्पर्य है। अब लोकपूरण क्रिया के समाप्त होने पर समुद्घात पर्याय का उपसंहार करने वाला, अभी तो प्रकाश सॉरी प्रदेश फैले थे, अब वो समेटेंगे, मूल शरीर में प्रवेश करेंगे। तो उपसंहार करने वाला केवली जिन क्या अक्रम से उपसंहार करके स्वस्थान में निपतित तो होता है, निपतित यानी गिरता है, यानी अभी चार समय होगी ना, अब डायरेक्ट मूल शरीर में आते कि फिर वो क्रम से आते हैं, या उतरने वाले का कोई क्रम नियम है? ऐसी आशंका के निराकरण के लिए उतरने वाले का सूत्र से सूचित होने वाला किंचित प्ररूपण करेंगे। यथा लोकपूरण समुद्घात का उपसंहार करता हुआ फिर भी मंत समुद्घात को करता है, यानी वो प्रतर रूप हो जाता है, क्योंकि मंथ रूप परिणाम के बिना केवली समुद्घात का उपसंहार नहीं बन सकता, यानी अभी वात वलय में से समेटेंगे, पहले अंदर आ जाएंगे। तथा लोकपूरण समुद्घात का उपसंहार करने के अनंतर ही समयोग परिणाम को नाश करके सभी पूर्व स्पर्धक समय के अविरोध पूर्वक उद्घाटित हो जाते ऐसा जानना चाहिए। ये ऊपर भी स्पर्धक बात आई थी, वो योगस्थान के लिए ही आई थी, मैंने बोला ना यहाँ अनुभाग की बात की परंतु वो तो योग के योग की बात थी वहां पर। अपूर्व पद्य विहान तो पूर्व उत्थाय सवत्थ मनोभागानम असंख्येज्य अनंते भागे घादे थे। अपूर्व स्पर्धक विधि से जो बताया था, अभी ये योग स्थान पूरे बहुत विस्तार का विषय अभी कर्मकांड में चलेगा, उसमें भी वो सारे वर्गणा है, पूर्व स्पर्धक अपूर्व स्पर्धक आदि बातें आती है, उसकी अपेक्षा से वो कथन था। यहाँ क्या हम हमने पढ़ा इसको अर्थ देखते हैं। अभी जो एक समयोग हुआ था एक वर्गणा रूप से हुआ था, अभी क्या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग योग हो जाएगा, तो उसकी फिर वर्गणा स्पर्धक अनेक स्पर्धक ऐसी रचना हो जाएगी, पूरा योग स्थान बनेगा। तो पूर्व स्पर्धक यानी जैसे पहले स्पर्धक की रचना थी एक योग स्थान में वैसी हो जाती है। तो समय के अविरोध पूर्वक यानी यथा आगम उद्घाटित हो जाते हैं, सभी स्पर्धक रूप हो जाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग उसके योग अपने अपने जैसे थे पहले वैसे हो जाते हैं। पुनः मंत समुद्घात का उपसंहार करता हुआ कपाट समुद्घात को प्राप्त होता है। लोक पूरण से प्रतर और प्रतर में कपट, क्योंकि कपाट परिणाम के बिना उसका उपसंहार करना नहीं बन सकता। तत्पश्चात अनंतर समय में दंड समुद्घात रूप से परिणाम कर कपाट समुद्घात का उपसंहार करता है। जिस तरह से वो फैलते गए वैसे ही यहाँ समेटने में भी उसी क्रम से समेटना चालू किया उन्होंने, क्योंकि दंड समुद्घात का उसके अनंतर ही होने का नियम देखा जाता है। उसके बाद तदनंतर समय में स्वस्थान रूप केवली पने से दंड समुद्घात का उपसंहार करता है। अभी स्वस्थान हो जाता है, ये कितने समय तक किया? सात समय, आठवें समय में मूल शरीर में वापस आ गया। उस समय न्यूनता और अतिरिक्तता से रहित मूल शरीर के प्रमाण से केवली भगवान के जीव प्रदेशों के अवस्थान का नियम देखा जाता है। क्या कहते, अभी जो दंड के बाद मूल शरीर में प्रवेश किए, तो क्या प्रवेश करते समय पहले थोड़े शरीर में किया फिर बाद में शरीर में फैलिए, ऐसा है? तो कहते न्यूनता से रहित, कहीं पर हीन नहीं है, जैसे हाँ मूल शरीर में तो थे ही थे, अभी वो सब फैले थे वो सभी समेट कर अंदर पूरे शरीर में आ गए। योग की ही अपेक्षा लेना, नहीं तो अगर उसमें अगर बताते तो अनंत की बात करते तो अनुभाग की अपेक्षा अप्रशस्त कर्मों का नाम डालते वहाँ पर, वहाँ योग की ही बात चली थी। संसार अवस्था में भी अपूर्व स्पर्धक पाए जाते हैं, अभी उसका वही तो बोला मैंने आपको, योगस्थान का पूरा या तो कर्मकांड में से अभी अपना हुआ नहीं है ना, योगस्थान का तो हो जाएगा तभी आपकी क्वेरी का
निव।
क्योंकि क्या वो विषय पूरा अलग ही, योगस्थान हुआ है अपना पहले भाग में आया था,
पहले भाग में प्रदेश बंद में फिर योगस्थान में,
हाँ लास्ट लास्ट में है योगस्थान, पूरा विस्तार से लिया था अपना। अपूर्व स्पर्धक संसार अवस्था में भी पाए जाते हैं, जघन्य योगस्थान से लेकर पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट योगस्थान तक बहुत बार अपूर्व स्पर्धक होते हैं। वो जो कर्मों में अपूर्व स्पर्धक वैसा नहीं समझना। देखो तो उस समय न्यूनता और अतिरिक्त, अतिरिक्त नहीं अन्य प्रकार से रहित मूल शरीर के प्रमाण से, जैसे मूल शरीर में पहले थे वैसे ही केवली भगवान के जीव प्रदेशों के अवस्थान ने वो भी मूल शरीर में सब समेट जाते, नियम देखा जाता है। इस प्रकार केवली समुद्घात से उतरने वाले केवली जिनके, ये तीन समय होते हैं, चढ़ने वाले को चार समय बताए, उतरने वाले के तीन, क्योंकि लोक पूरण एक समय के लिए ही है, क्योंकि चौथे समय में स्वस्थान में अंतर्भाव देखा जाता है।
अभी जब उतर के अंदर प्रवेश कर गए इनका प्राप्ति हो गया,
हाँ वहाँ तो ये सब हो गए, मिश्र में मिश्र हुआ था तो कपाट में, यहाँ पर्याप्ति भी होगी, होगी अभी यहाँ शरीर पर्याप्ति, उच्छ्वास और भाषा तीन पर्याप्ति भी होगी। अभी यहाँ क्या कहते देखें, प्रवेश करते समय अथवा चौथे समय के साथ केवली समुद्घात से उतरने वाले केवली के चार समय लगते हैं, ऐसा किन्हीं आचार्यों के व्याख्यान का क्रम है। यानी मूल शरीर में प्रवेश करना इसको भी गिनेंगे तो ये भी चार समय वो चार समय, पूरा आठ समय का कहलाएगा। उनका अभिप्राय है कि जिस समय में कपाट समुद्घात में ठहर कर दंड समुद्घात का उपसंहार करता है वह भी समुद्घात में अंतर्भूत ही करना चाहिए। कपाट समुद्घात में कहाँ ठहरता है, मूल शरीर में ठहरता है। तेसी मही पाओ जम्मी समय ठाई दुण दंडम वस रहे सोवी समुद्घातम अभावियो, उसमें कपाट का नाम नहीं लिया था। जन्मी समय ठाई दून, जिस समय में अवस्थित होकर, ऐसा चाहिए वो, कपाट समुद्घात में नहीं, सेकंड लाइन देखो, उनका अभिप्राय यह है, चार समय लगते ऐसा जो कहते हैं, उनका अभिप्राय यह है कि जिस समय में अभी वो पेंसिल से करो, ठहर कर कहो या अवस्थित होकर, अवस्थित यानी मूल शरीर में है, क्योंकि ऊपर लिखा है जम्मी ठमय ठाई दून, जिस समय में अवस्थित होकर दंड समुद्रात का उपसंहार करता है, यानी मूल शरीर में आकर दंड का उपसंहार। देखो देखो वो कपाट समुद्घात में ठहर कर इतना निकाल दो। पहले क्या किया था, लोक पूरण था, प्रतर के द्वारा लोक पूरण का उपसंहार किया, कपाट के द्वारा प्रतर का किया, दंड के द्वारा कपाट का किया, ऐसे मूल शरीर में ठहरे ना भी तब दंड का कर। इसलिए समुद्रघात में उतरने वाले प्रतरगत केवली जिनके पहले के समान कार्मण का योग होता है, कपाट समुद्रघात को प्राप्त केवली के औदारिक मिश्र का योग होता है, तथा दंड समुद्रघात को प्राप्त केवली के औदारिक का योग होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर उपयुक्त पढ़ने वाली गाथा आर्या गाथाएं है। हाँ कपाट समुद्रात में ठहर कर ये निकाल, हाँ अवस्थित होकर लिखो, ठहर कर नहीं अवस्थित होकर, कहाँ ठहर कर, मूल शरीर में, वो अपने समझने के लिए लिखे तो लिखे, वैसे भाषांतर में नहीं आएगा वो, ये तो कुछ नहीं ना वहाँ पर करेक्शन में, तो ये बाकी चीजें तो नहीं आ रही है कुछ, समय में लोकपूर्ण, समय में अंतर अर्थात लोकपूर्ण। हाँ अभी ये गाथा है हम देखेंगे,
हाँ छठे समय में अंतर होता है लोक पूरण,
अब हम यहाँ पढ़ेंगे पहले दंडम प्रथमे समये कवाटमथ चोत्तरे तथा समये मंथानमथ तृतीये लोकव्यापी चतुर्थे तु, इसका अर्थ देखते हैं। कौन से रहेगी उपयुक्त पढ़ने वाली आर्या गाथाएं है, यहाँ तक पढ़ा था मैंने और बाद में ऊपर का करेक्शन करवाया। केवली जिनके प्रथम समय में दंड समुद्घात होता है, ये शुरू से बता रहे, उत्तर अर्थात दूसरे समय में कपाट समुद्घात होता है, तीसरे समय में मंथान समुद्घात होता है, और चौथे समय में लोकव्यापी समुद्घात होता है। संहरति पंचमे तु अंतराणि मंथानमत पुनश्चष्ठे सप्तमके च कवाटम संहरति ततोष्टमे दंडम। पांचवे समय में संहर पंचमे तु अंतराणि, अंतराणि जो लिखा है समय में लोकपूरण लिखा है ना, पांचवे समय में लोकपूरण, वहां समय में अंतर अर्थात लोकपूरण, उसी का दूसरा नाम अंतर बताया। अंतर अर्थात लोकपूरण समुदाय का उपसंहार करता है, यानी चौथे समय में लोकपूरण हुआ ना, पांचवे समय में क्या हुआ, लोकपूरण का उपसंहार, ये समेटेगे। फिर छठे समय में मंथान समुद्घात का उपसंहार करता है, सातवें समय में कपाट समुद्घात का उपसंहार करता है, और आठवें समय में दंड समुद्घात का उपसंहार करता है, उसमें से निकला वो उसी में इंक्लूड कर दिया उन्होंने। इसके बाद केवली समुद्रात प्ररूपना समाप्त होती है। अब उतरने वाले केवली जिनके प्रथम समय से लेकर स्थिति घात और अनुभाग घात की प्रवृत्ति कैसी होती है, ऐसी आशंका होने पर निशंक के आगे विसर्ग करने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं। यानी चढ़ते समय तो हमने एक एक समय में देखा था, उतरते समय में क्या होता है ये पूछ रहे। एक तो शेषी गाय ठिदिये संखेज्य भागे हणई, केवली समुद्घात से उतरने वाले के प्रथम समय से लेकर शेष रही स्थिति के संख्यात बहुभाग का हनन करता है। चढ़ते समय कितना किया था याद है ना, असंख्यात बहुभाग। अब अंतर्मूलित प्रमाण हुआ है, अभी संख्यात बहुभाग का हुआ। एक तो अर्थात उतरने वाले के प्रथम समय से लेकर शेष रही अंतर्मूलित प्रमाण स्थिति के संख्यात बहुभाग को कांडक रूप से ग्रहण कर एक ही समय में स्थिति घात करता है, क्योंकि वहां अन्य प्रकार संभव नहीं है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। शेषस्य च अनुभागस्य अनन्ते भागे हणैः,
ये तो आयाम हुआ, कितना हुआ
एक समय,
एक समय
चढ़ते और उतरते समय में भी एक ही समय में स्थिति कांडक घात हो रहा है, और वो चढ़ते समय असंख्यात बहुभाग का कांडक ग्रहण किया था, अभी संख्यात भाग बहुभाग, यानी संख्यात वहां भाग शेष रहेगा। पहले वाला असंख्यात बहुभाग है ना, क्योंकि पहले के असंख्यात भाग की स्थिति थी वो अंतर्मूर्त कर दी उन्होंने चार समय में, तो वो बहुत बड़े बड़े थे, और अंतर्मूर्त ही घटेगा असंख्यात, अंतर्मूर्त का संख्यात बहुभाग भी अंतर्मूर्त ही होगा। पहले तो असंख्यात वर्षों का कांडक होता था। शेषस्य च अनुभागस्य अनन्ते भागे हणैः, तथा वहां शेष रहे अनुभाग के अनंत बहुभाग का हनन करता है। पहले घात करने से शेष बचे अनुभाग सत्कर्म के अनंत बहुभाग का कांडक रूप से एक समय द्वारा अनुभाग घात यह जीव करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ पर अप्रशस्त कर्मों का समझ लेना, जैसे पहले बताया था। एतो पाए चाहिए ना, डबल तो चाहिए, एतो पाए का अर्थ होते यहाँ से आगे। एतो पाए ठिदि खंडयस्य अनुभाग खंडयस्य च अंतो मूर्तिया उत्कीर्णद्धा, यहाँ अंतो मूर्तिया चाहिए डबल तो, बराबर है ना। पीछे देख लो पश्चिम स्कंद में, एक तो पाए अंतोमूर्तिया उत्कीर्ण था, बराबर है 208 पेज पर, वहां जो मूल सूत्र लिखे ना उसमें ऐसा ही लिखा है, मैंने करेक्शन किया हुआ, बराबर है। उन्होंने करेक्शन नहीं बताया, परंतु हमने परिशिष्ट में देख लिया। तो कहते एक तो अर्थात, ये हिंदी नहीं पढ़ा ना, एक तो पाए इसके आगे स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण काल अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। इसके बाद अंतर्मूर्त वाला स्थिति कांडक घात होगा, अभी एक एक समय में होता था अंतर्मूर्त वाला होगा।
अनुभाग कांडक अंतर्मूर्त वाला हो गया, अनुभाग कांडक जो है अंतर्मूर्त वाला हो गया,
दोनों
बोलो।
यानी उसके कांडक करने के लिए काल कितना लगेगा, तो अंतर्मुख करेगा।
लेकिन अपना अनुसमय
हाँ, इसलिए वहाँ था क्योंकि वहाँ विशुद्धि हर समय अनंत गुणी बढ़ती थी, अब यहाँ विशुद्धि में कोई वेरिएशन नहीं, वैसा का वैसा रहता है। इसलिए हमने पहले भी देखा था कि जहाँ विशुद्धि बढ़ती नहीं है वहाँ अनुभाग कांडक घात होते हैं। एक एक समय वाली बात नहीं हुई यहाँ, एक समय वाली क्योंकि यहाँ भी समुद्घात में होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। यानी वहां भले वो विशुद्धि नहीं बढ़ रही है समुद्घात में, परंतु वो विशिष्ट प्रोसेस है, जहाँ आयु कर्म अंतर्मुत रहता है वहाँ ऐसी बात बन जाती है।
स्वस्थान के भी तेरी गुणस्थान वाले के समुद्र के पहले भी जो अनुभव का था वो अंतर्मुत वाला हो रहा था।
हाँ,
समुद्र से पहले भी लेकिन अपन पाले हो तो गुणस्थान में सब अनुसमय बर्तन लेके आए थे पहले,
वो बात अलग थी क्योंकि वहाँ विशुद्धि बढ़ रही थी, अब समान परिणाम हो रहे हैं इसलिए। नहीं, कल भी बात आई ना चौथे में, चौदहवे में, बारहवे में तो क्या हो रहा था, वहाँ तो ज्ञानावरणादि की विशेष बात की थी, उसमें भी अनुभव कांड घात हो रहे थे। ये अनुसमय परतन मात्र मोनी में हुए थे, ज्ञानावरण में तो अनुभव कांड घात हो रहे थे, अब यहाँ ज्ञानावरण नहीं रहा तो इसमें नाम गोत्र में अनुभव कांडक हो गए और स्थिति कांडक भी हो गए। वो भी मोनी में हो रहे हैं।
हाँ, मोनी में।
तो कहते हैं यहाँ उसके आगे उत्कीर्ण काल अंतर्मूर्त प्रमाण होता है, लोक पूर्ण समुद्घात के संपन्न होने के अनंतर समय से लेकर प्रति समय में स्थितिघात और अनुभागघात नहीं होता। पहले क्या हो रहा था, प्रत्येक समय में हो रहा था, किंतु स्थितिकांडक घात और अनुभाग कांडक घात का काल यानी वो करने का प्रोसेस का काल अंतर्मूर्त प्रमाण प्रवृत्त होता है। हाँ, प्रथम समय से लेकर लिखा ना, यानी अभी ये कांडक ग्रहण किया, कितना कांडक ग्रहण करेंगे, संख्या दो भाग वाला, यानी इतना कांडक ग्रहण करेंगे अभी आयु के समझ में है, कोई बात नहीं। देखो
हो गया।
हाँ, उतरने का समय शुरू हुआ जब से लेकर, कर्मों की स्थिति इतनी थी, समुद्घात शुरू किया तब, अब क्या किया, स्थिति घटाई तो ऊपर का बहुभाग लिया और उसका घात करके उसमें ये सब परमाणु इसमें समा गए, कुछ तो निकल गए, कुछ समा गए पहले समय में, दूसरे समय में और घात किया, तीसरे समय में और घात किया, चौथे समय में और। अभी हम लोक पूर्ण अवस्था में आए तो असंख्यात बहुभाग असंख्यात बहुभाग का घात होते होते अभी हम कहें अंतर्मूर्त प्रमाण स्थिति शेष रही, इतनी रही। अब प्रतर में आएगा फिर तो संख्यात बहुभाग वाला कांड ग्रहण करेगा, परंतु वो एक समय में नीचे नहीं आएगा, फाली रूप से आएगा, एक समय, दो समय, तीन समय, ऐसे एक एक फाली उसके नीचे आएगी, परंतु कांडक का प्रमाण कितना है, संख्या दो, ये बात यहाँ बताई। अभी तक क्या होता था, एक एक समय में होता था, अब क्या होगा, उसके लिए एक अंतर्मूर्त लगेगा काल।
अभी तो मतलब सिर्फ चार समय
ना,
अभी तक मतलब सिर्फ चार समय, उत्तर छठे के चार समय।
हाँ, चार समय के लिए एक एक समय में हुआ, अब अंतर्मूर्त में होगा, बिल्कुल चार समय। इस प्रकार ये यहाँ सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है, इस प्रकार इतनी विधि से केवली समुद्घात का उपसंहार करके यानी उसको समेट कर स्वस्थान में विद्यमान केवली जिनके संख्या हजार स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक के कितने हो गए, अभी हजारों स्थिति कांड घात और अनुभाग कांड के समय के अविरोध पूर्वक हो जाने पर अभी भी तेरहवे का अंत नहीं आया है, भले उसको अंतर्मूर्त कहते हैं, समुद्घात होने पर भी अंतर्मूर्त में क्या हो रहा है, हजारों स्थिति कांड घात हजारों अनुभाग कांड घात हो रहे। तदनंतर योग निरोध करता हुआ इन दूसरी क्रियाओं को रचता है, यहाँ पर योग निरोध हो जाता है, अभी योग निरोध क्या होता है वो बताएंगे, इसका ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को आरंभ करते हैं। एतो अंतो मूत्तम गंतुन बादर काय जोगेन बादर मन जोगम निरुंभई। अब ये पहले में पहले क्या है, यहाँ तीन योग है, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तो काय योग के द्वारा मनोयोग का निरंभन करेंगे यानी उसको निरुद्ध करेंगे, उसका निरोध हो जाएगा। ये बादर शब्द लगाया क्योंकि योग भी यहाँ सूक्ष्म होने वाला है, तो बादर काय योग से बादर मनोयोग का निरोध किया, अभी हम पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। सूत्र का अर्थ देखते हैं, आगे अंतर्मूर्त जाकर यानी ये कार्य संपन्न होने के लिए अंतर्मुहूर्त लगेगा। बागर काय योग के द्वारा बागर मनोयोग का निरोध करता है। मन वचन और काय की चेष्टा प्रवृत्त करने के लिए कर्म के ग्रहण के निमित्त शक्ति रूप जो जीव का प्रदेश परिस्पंद होता है वह योग कहा जाता है। क्या कहा? योग किसे कहना? मन वचन और काय की चेष्टा प्रवृत्त करने के लिए, हमें जो ये मन की वचन की और काय की प्रवृत्ति होती है, चेष्टा होती है, प्रयत्न होते हैं जो कुछ, वो करने के लिए जीव का क्या योगदान होता है? और कर्म के ग्रहण के निमित्त, कर्म का भी ग्रहण होता है, वो क्या है? जो शक्ति रूप जो जीव का प्रदेश परिस्पंद होता है वह योग। प्रदेश परिस्पंद ने प्रदेशों का कंपन चलायमान होना, परंतु वह तीन प्रकार का है, मनोयोग वचन योग और काय योग। इनका अर्थ सुगम है, उनमें से एक एक अर्थात प्रत्येक दो प्रकार का है, यानी जो योग है मनोयोग भी वचन योग भी और काय योग भी, कौन से दो प्रकार है? बादर और सूक्ष्म। योग निरोध क्रिया के संपन्न होने के पहले सर्वत्र बादर योग होता है, पहले गुणस्थान से लेकर संयोग केवली के जब तक योग का निरोध नहीं होता है तब तक कौन सा योग है? बादर का योग है। सभी योग बादर योग है, काय एक शब्द नहीं लगाएंगे, बादर योग होता है। इससे आगे सूक्ष्म योग से परिणाम कर योग निरोध करता है, यानी सूक्ष्म योग हो जाना इसी को कहेंगे बादर योग का निरोध किया, कथन ऐसा ही होगा, क्योंकि बादर योग से ही प्रवृत्त हुए केवली जिनके योग का निरोध करना नहीं बन सकता, यानी पहले योग को सूक्ष्म किया जाएगा और फिर बाद में उसका निरोध होगा, कंप्लीट योग से रहित हो जाएंगे। उसमें सर्वप्रथम यह केवली जिन योग निरोध के लिए चेष्टा करता हुआ, यानी क्या प्रयत्न होते हैं उसके, तो बादर काय योग के अवलंबन से, अवलंबन के बल से बादर मनोयोग का निरोध करता है, यानी वो बादर काय योग रूप से प्रवृत्ति चलती है तो बादर मनोयोग उत्पन्न नहीं होगा अभी इसके आगे, तो उसका निरोध किया ऐसा कहेंगे, क्योंकि बादर काय योग रूप से व्यापार रहने प्रवृत्ति करता हुआ ही यह केवली जिन बादर मनोयोग की शक्ति का निरोध करके सूक्ष्म रूप से संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त के सबसे जघन्य मनोयोग से घटते हुए असंख्यात गुणहीन रूप से उसे स्थापित करता है, ये उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है उसका मनोयोग। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तों को जहन्य मनोयोग क्यों कहा? अपर्याप्तों में कहा है मनोयोग? यानी वो जगह निवृत्ति पर ही आप समझना, वो पद्धत का लिखा है ऊपर, कोई करेक्शन है नहीं? वो निकाल के देखेंगे हम, योग के जो 85 स्थान बताए ना उसमें देखना पड़ेगा संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के मनोयोग होता है कि नहीं होता, आप करना उतना। योग स्थान में जो 85 स्थान बताए कर्मकांड में,
नहीं इसी के नेक्स्ट पेज में जगन ने लिखा, उसमें 164 पेज में नीचे से दूसरी लाइन में जगन ने पर्याप्त प्रकार पर्याप्त लिखा हुआ, नेक्स्ट पेज के नीचे से दूसरी लाइन में जगन ने पर्याप्त,
वो काय योग के लिए बताया। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं। अब हम आते हैं 163 क्योंकि योग कब हो जाते, क्योंकि वहाँ तो काय बल प्राण भी नहीं लेते ना, ये मनोबल प्राण वगैरह पर्याप्त अवस्था में योग भी नहीं होता है। हाँ, योग तो पर्याप्त होने पर होता है। आगे 359 में सूक्ष्म योग कहने पर संगी पंजनी ने पर्याप्त के सबसे जगन मनोयोग परिणाम से असंख्या गुणा है ना, पर्याप्त ये पर्याप्त चाहिए, पर्याप्त में मनोयोग होता नहीं। रेफरेंस पेज 165। पैराग्राफ 369 बताए ना, 359। हाँ, अभी हम आते हैं। ख्याल में ना मैंने क्यों वो अपर्याप्त के बारे में प्रश्न उठाया, क्योंकि अपर्याप्त में तो मनोयोग होता ही नहीं है। तो संगी पंचेंद्रिय जो पर्याप्त जीवों के मिनिमम पॉसिबल मनोयोग है, उसके भी असंख्यात व भाग प्रमाण यहाँ योग हो जाता है, उसको असंख्यात गुणाहीन के। अभी हम 163 पर आ गए। इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रमाण काल तक बादर योग के रूप से विद्यमान केवली जिन बादर मनोयोग की शक्ति का निरोध करके तदनंतर अंतर्मूर्त प्रमाण काल के द्वारा उसी बादर योग का अवलंबन करके बादर वचन योग की शक्ति का भी निरोध करता है। यानी अभी बादर काय योग प्रवृत्त होते हैं तो शुरू में बादर मनोयोग का निरोध हो गया। निरोध हुआ यानी क्या, वो सूक्ष्म हो गया, डायरेक्ट उसको अंत नहीं होता है, क्योंकि उसको सूक्ष्म करके फिर सूक्ष्म काय के द्वारा उसका निरोध करेंगे टोटल। अभी तो बादर काय योग में विद्यमान है और बादर मनोयोग को सूक्ष्म मनोयोग कर दिया। दूसरे आगे के अंतर्मूर्त में बादर काय योग में ही विद्यमान रहते हुए बादर वचन योग को सूक्ष्म वचन रूप किया। यहाँ तक आए ख्याल में, ऐसा प्रतिपादन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। तदो अंतर्मूर्त बादर काय जोगेण बादर वचि जोगम निरुंभई। अभी हर एक के लिए अंतर्मूर्त, तो ऐसे अंतर्मूर्त कितने हो रहे हैं। उसके बाद अंतर्मूर्त काल से नहीं, काल के द्वारा बादर योग काय योग द्वारा बादर वचन योग का निरोध करता है, यानी बादर वचन योग को सूक्ष्म वचन रूप परिणमाता है। यहाँ पर बादर वचन योग ऐसा कहने पर द्विंद्रिय पर्याप्त के पर्याप्त लिया ना, यहाँ वचन के लिए भी सबसे जघन्य वचन योग आदि उपरीम योग शक्ति का ग्रहण करना चाहिए। यानी उसमें से वचन योग वालों में मिनिमम वचन योग किसको है, तो द्विंद्रिय पर्याप्त को। उसमें भी योग के वेरिएशंस बहुत है, उसमें भी जघन्य वाला लिया और उस जघन्य से भी असंख्यात गुणा ही नहीं सा यहाँ सूक्ष्म योग हो जाता है, उसका निरोध करके उसे द्विंद्रिय पर्याप्त के जघन्य वचन योग से नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म रूप से स्थापित करता है। इस प्रकार यह इस सूत्र का भावार्थ है। तो मनोयोग का सूक्ष्म कर दिया, वचन योग को भी सूक्ष्म कर दिया, बादर योग में स्थित है काय योग में। तदो अंतो मुहूर्ते न बादर काय जोगे न बादर उच्छ्वास निश्वासन निरुंभई। यह श्वास का भी निरोध होता है, उसको भी सूक्ष्म किया जाता है। तो कहते उसके बाद अंतर्मूर्त काल से बादर काय योग द्वारा बादर उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है। यहाँ पर भी बादर उच्छ्वास निश्वास ऐसा कहने पर सूक्ष्म निगोध निवृत्ति पर्याप्त जीव के, ये निवृत्ति पर्याप्त लिया यानी उसकी पर्याप्ति हुई है, पर्याप्त नहीं लिया। आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए, अनापान हुए, आन पान चाहिए, आन पान का अर्थ होता है श्वासोश्वास पर्याप्ति। आन पान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए सबसे जघन्य उच्छ्वास निश्वास शक्ति से असंख्यात गुणी संगी पंचेंद्रिय के योग्य उच्छ्वास निश्वास रूप परिस्पंद का ग्रहण करना चाहिए। यानी इतना यहाँ था, अब उसका निरोध किया, उसका निरोध कर, यानी वो कितना था कि जो सूक्ष्म निरोध में जितनी उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर, कौन सा जीव लिया, पर्याप्त जीव, उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसका उच्छ्वास का कार्य चलता है। उच्छ्वास यानी केवल नाक से लेना, वो नहीं, वो तो क्योंकि लब्धिया पर्याप्त, ये सॉरी निगोध जीव है, तो उसके योग्य जो कुछ इनटेक आउटपुट होता है तो उसको वहां उच्छ्वास से समझना, श्वासोश्वास समझना, तो उसका जितना जो है ना, उसकी जितनी वो श्वासोश्वास की शक्ति है उससे संगी पंचेंद्रिय में कितनी है तो असंख्यात गुणी, इतनी थी अरिहंतों की। अब वो कितनी करेंगे अभी, तो कहते हैं उसका निरोध कर, उसे सबसे जगन्य सूक्ष्म निगोध की उच्छ्वास निश्वास शक्ति से नीचे असंख्यात गुणहीन सूक्ष्म भाव से स्थापित करता है। कितनी थी शक्ति अरिहंतों में, तो ये सूक्ष्म निगोध की सबसे जघन्य उच्छ्वास शक्ति मिनिमम ली, उससे केवली भगवान की कितनी था, असंख्यात गुणा था। अब उसको कितनी करते हैं तो इससे भी असंख्यात गुणा हीन रूप परिणाम आता है उच्छ्वास शक्ति, ये बात बताना चाहिए। सूक्ष्म निगोध पर्याप्त जीव उच्छ्वास पर्याप्ति होने पर उसमें जो इतनी मिनिमम उच्छ्वास शक्ति है उससे संगी पंचेंद्रियों की उच्छ्वास शक्ति असंख्यात गुणा होती है, उसका निरोध करके उसको सूक्ष्म किया ने सूक्ष्म निगोध से भी असंख्यात गुणा हीन कर दिया, इतने उसकी उच्छ्वास की हीन हो गई। और ये सब कार्य बादर काय योग में रहते हुए करता है, तो इसलिए वो कहते बादर काय योग द्वारा किया। शंका, सूत्र में निर्दिष्ट नहीं किया गया इस प्रकार का विशेष कैसे जाना जाता है। कहते इस प्रकार की आशंका यहाँ नहीं करनी चाहिए क्योंकि व्याख्यान से उस प्रकार के विशेष का ज्ञान हो जाता है। तदो अभी क्या क्या किया, पहले वचन मनोयोग का, बादर मनोयोग का, फिर बादर वचन योग का, फिर बादर श्वासोश्वास का, यानी सबको सूक्ष्म किया। अब कहते हैं अंतो मुहूर्तेन बादर काय योगेन तमेव बादर काय योगम निरुम्बय। अब बादर काय योग का निरोध करके सूक्ष्म काय योग हो जाएगा। अब यहाँ बादर काय योग द्वारा ही बताया है, उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल से बादर काय योग के द्वारा उसी बादर काय योग का निरोध करता है। हाँ, वो बादर काय योग में ही है,
ये तो तब से हो गया था जब दूसरा शुक्ल ध्यान होता, तब से हो गया था योग की संक्रांति, मैंने तो मन से वचन वचन से काय में होता था।
हाँ,
शुरू से ही तो एक ही काय में,
वो तो बारहवें गुण स्थान में बताया था, अभी बाद में तो पलटना होता है ना, वचन योग काय योग तो होगा। हाँ,
बारहवें से ही मैंने, मतलब जब उन्होंने केवल ज्ञान उत्पन्न किया तभी से उनका जो एक ही योग में संक्रांति बंद हो गई थी।
हाँ,
यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि बादर काय योग में रहकर उसको नाश किया,
नाश किया,
मतलब योग पर कोई संक्रांति नहीं होगी।
यहाँ पर भी बादर का योग से व्यापार करता हुआ ही उनको ऐसा कहना है कि यहाँ पर एक ही योग में रहते हुए ये सब कार्य होता, तो हम 357 पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी बादर योग से का योग से व्यापार करता हुआ ही अंतर्मूर्त काल द्वारा उसी बादर का योग को सूक्ष्म भेद में स्थापित कर निरोध करता है। यानी ऐसा नहीं है कि अभी दूसरे बाकी सूक्ष्म हो गए इसलिए सूक्ष्म मनोयोग या सूक्ष्म वचन योग में रहकर बादर का योग को सूक्ष्म नहीं करता, तो बादर का योग में है उसी काल में उसका सूक्ष्म रूप करने का कार्य चलता है, यानी बादर का योग से वो सूक्ष्म का योग हो जाता है। यह इस सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है, क्योंकि सूक्ष्म निगोध के जघन्य योग से भी असंख्यात गुणी हीन शक्ति रूप से परिणम कर, काय योग की बात है नहीं यहाँ पर, पहले उच्छ्वास के लिए सूक्ष्म निगोद को याद किया था, अभी सूक्ष्म निगोद का जो का योग है मिनिमम पॉसिबल, उससे भी असंख्यात गुणाहीन शक्ति रूप से परिणाम कर सूक्ष्म रूप से उसकी इस स्थान में प्रवृत्ति का नियम देखा जाता है। अलब्धि अपर्याप्त ले लो, उपपाद योग ले लो, जो आपको चाहिए वो ले लो, सबसे मिनिमम योग से असंख्यात गुणाहीन। यहाँ पर उपयोगी दो श्लोक है, पंचेन्द्रियोप्यसंगीय पर्याप्तो जगन्य योगी स्यात् निरुद्नद्युनो योगम ततोप्यसंख्यात गुणहीनम् विन्द्रिय साधारण यो वा गुच्छस्वासावधो जयति तद्वत् पनकस्य काय योगम जगन्य पर्याप्त कस्यादः। जो असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव जगन्य योग से युक्त होता है, उससे भी असंख्यात गुणहीन मनोयोग का केवली जिन निरोध करता है। द्विन्द्रिय जीव और साधारण क्रम से वचन योग और उच्छ्वास को, यानी द्विन्द्रिय में वचन योग लगाना और साधारण यानी निगोद में उच्छ्वास लेना, जिस प्रकार धारण करते हैं यानी उनका जो जगन योग है उससे उनके समान उनसे भी कम दोनों योगों को केवली भगवान जीतते हैं। क्वेश्चन क्यों गया? जगन्य पर्याप्त जिस प्रकार का योग को धारण करते हैं, जगन्य निगोद चाहिए, उससे भी कम का योग को केवली भगवान जीतते हैं। ये बीच में प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, पूर्ण विराम ने दंड कहते उसको वो चाहिए। अभी जो हमने पढ़ा है उसी संबंध में ये दो श्लोक, इसका अर्थ तो हम देख चुके पहले, यानी पहले निगोद से कहो या द्विन्द्रिय से कहो असंख्यात गुणा था, उनसे भी असंख्यात गुणा ही नाप हो जाए। इस प्रकार यथाक्रम यानी क्रम से बादर मनोयोग, एक एक अंतर्मुहूर्त लगता है इसके लिए, बादर वचन योग, बादर उच्छ्वास निश्वास और बादर का योग की शक्तियों का निरोध करके क्या क्या उसको सबको सूक्ष्म कर दिया, इन योगों की सूक्ष्म परिस्पंदन रूप शक्तियों को शेष करके पुनः सूक्ष्म कायोग व्यापार के द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की भी शक्तियों को भी उनका इस परिपाटी के अनुसार निरोध करते। क्या कहना चाहते हैं? पहले बादर कायोग में थे, तभी बादर मनोयोग को सूक्ष्म किया, बादर कायोग में रहते हुए बादर वचन योग को सूक्ष्म किया, बादर कायोग में रहते हुए उच्छ्वास को किया सूक्ष्म, और काय में रहते हुए काय को भी सूक्ष्म किया। अब क्या करेंगे? सूक्ष्म काय योग में विद्यमान रहेंगे तो सूक्ष्म मनोयोग का पूरा नाश करेंगे, अभी निरोध करना नहीं पूरा नष्ट होगा, फिर सूक्ष्म वचन का ना योग का नाश होगा, फिर उच्छ्वास उसका निरोध हो जाएगा और बाद में सूक्ष्म काय योग भी नष्ट होगा। परिपाटी ने वो सीक्वेंस वही रहेगा उसका। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं, तदो अंतमोत्तम गंतुन। अभी सूक्ष्म कायो हुआ था ना, सबका सूक्ष्म करने के बाद सुहम काय जोगे न सुहम मन जोगम निरुम्भई, वो भण दिख रहा है क्या? मई है मगर ऊपर का जो लाइन है ना वो अस्पष्ट हो गई है, मन योग अभी कहीं करेक्शन होगा तो बता देना, अभी नहीं है। हाँ, उसके बाद अंतर्मुहूर्त जाकर सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करता है। यहाँ पर सूक्ष्म योग ऐसा कहने पर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य मनोयोग परिणाम से असंख्यात गुणाहीन अवक्तव्य स्वरूप यानी जो कह नहीं सकते अवक्तव्य, जिसका कथन नहीं हो सकता, द्रव्य मन निमित्तक किसके निमित्त से है ये? भाव मन है कि केवली को? नितिन भाई भाव मन है, अरिहंत भगवान को भाव मन है कि? भाव मन किसको कहना पहले ये नक्की कर, भाव मन किसको कहना?
मन के द्वारा,
हाँ मन के द्वारा जानने को भाव मन कहते हैं। क्षोभम ज्ञान को, संगी पंचेंद्रिय का मन संबंधी जो ज्ञान है उसको कहेंगे भाव मन। वो केवली के है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अब इंद्रिय मन का कोई अवलंबन नहीं है, डायरेक्ट जानते हैं ना सभी आत्मा प्रदेश कारी जानते हैं, तो उनके तो वो है ही नहीं है। परंतु द्रव्य मन जो बना था, शरीर की रचना है, वो तो वैसे ही रहेगी, और उसके परमाणुओं का भी ग्रहण वगैरह चल रहा था, इसलिए वहां मनोयोग कहाँ था? तो कि द्रव्य मन निमित्तक जीव प्रदेश परिस्पंद का ग्रहण करना चाहिए, उसके लिए जो प्रदेशों का परिस्पंदन चलेगा क्योंकि कर्म है, उसके उदय से ये चलेगा, उसका निरोध करता है, नाश करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तदो, ये समझ में आई बात? तदो अंतो मुहूर्तेन सुहम काय योगेन सुहम बची योगम निरुम्बई, बची नहीं वच्ची करना, वच्ची नहीं वचन योग। उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल से सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म वचन योग का, याग का, योग का निरोध करता है। प्रोसेस वही है, अभी सूक्ष्म काय के द्वारा करेगा, अभी निरोध, सूक्ष्म का निरोध करने में बिल्कुल उस योग से रहित हो जाना, मनोयोग निकल गया, व्यसन योग निकल गया। यहाँ पर भी सूक्ष्म वचन योग ऐसा कहने पर द्विन्द्रिय पर्याप्त के सबसे जघन्य वचन योग शक्ति से नीचे असंख्यात गुणी हीन रूप वचन शक्ति ग्रहण चाहिए, क्योंकि उसने वो सूक्ष्म किया तब उतना हुआ था, अब उसको भी नष्ट कर दिया। अन्य शेष कथन सुगम है। तदो अंतो मुहूर्तेन सूम काय योगेन सूम उत्साहन निरुम्बई, उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल से सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास का निरोध करता है। यहाँ भी उच्छ्वास शक्ति का सूक्ष्मपना, सूक्ष्म निरोध पर्याप्त जीव के, पर्याप्त ही है ना, वहां निवृत्ति पर्याप्त ही कहा था, यहाँ पर भी पर्याप्त, क्योंकि उच्छ्वास पर्याप्त उनके ही होता है, सबसे जघन्य होता है। उस रूप परिणाम से नीचे इस सहयोगी केवली की उच्छ्वास शक्ति असंख्यात गुणी हीन रूप से जाननी चाहिए, उतनी थी सूक्ष्म की तब, अब उसको नष्ट करेंगे। इस प्रकार यह योग निरोध करने वाला केवली जिन सूक्ष्म काय योग के द्वारा परिस्पंदनात्मक क्रिया करते हुए मनवचन और उच्छ्वास निश्वास की सूक्ष्म शक्तियों का भी, पहले तो सूक्ष्म किया था, अभी उसका भी यथोक्त क्रम से, ऊपर बताए हुए क्रम से निरोध करके पुनः, अब एक अकेला सूक्ष्म काय योग रह गया, सूक्ष्म काय योग का भी निरोध करते हुए योग निरोध निमित्तक इन कर्णों को करता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र प्रबंध आया है। ये कितने काल में कर रहा है योग का निरोध? अंतर्मुख। और हम तो कहते धनतेरस के दिन वो काय का निरोध किया और फिर दो दिन बीत गए, ऐसा सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना। अच्छा, वाणी रुकी वो बात अलग है, परंतु उसको निरोध नहीं समझना, वहां वो तो अंतर्मुख नहीं होता है। बड़म समय नहीं, ऊपर तदो अंतो मुहूर्तम गंतुन सुम काय योगेन सुम काज योगम निरुम्ब मानो इमानी करणानी करेगी, यानी यहाँ अन्य कोई करण करेंगे वो बताएंगे क्या करते हैं। ये तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है, प्रतिपाती यानी उसमें से गिरना, अप्रतिपाती। उसके बाद अंतर्मुहूर्त काल जाकर सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म कायोग का निरोध करता हुआ इन कर्णों को करता है। यहाँ क्या विषय, अभी तो 13वां अनुष्ठान ही चल रहा है, अंत में आए हैं उसके, अभी सभी मनोयोग का निरोध हुआ, वचन योग का निरोध हुआ, विश्वास का भी हुआ, और सूक्ष्म कायोग था उसका भी निरोध हो रहा है अभी। उसके बाद अंतर्मूर्त काल जाकर सूक्ष्म कायोग के बल से उसी सूक्ष्म कायोग का निरोध करता हुआ वहां सर्वप्रथम अनंतर कहे जाने वाले यानी अभी जो बताएंगे इन करणों को, अभी ये कार्य हो गए, खास करण हो गए, अबुद्धि पूर्वक ही प्रवृत्त करता है यानी बिना इच्छा के ही ये सब हो जाता है। ये सभी बातें सहज रूप से होती है, इसमें कोई बुद्धिपूर्वक कार्य है ही नहीं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। परंतु वे करण कौन है ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, यानी कौन कौन से करण करते हैं यहाँ पर वो बताएंगे अभी। पढ़म समय अपोव हुआ है, अपूर्व फद्दयाणी करेदी पूर्व फद्दयाणम हेठ दो पूर्व, हाँ प्राकृत में ह्रस्व। प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों को नीचे करके अपूर्व स्पर्धकों को करता है, परम समय अपूर्व फद्दयाणी करेगी पूर्व फद्दयाणम हेठ दो, पूर्व स्पर्धकों से नीचे इससे पूर्व अवस्था में सूक्ष्म कायोग की परिस्पंदन रूप शक्ति को सूक्ष्म निगोद के जघन्य योग से असंख्यात गुणी हानि रूप से के हीन रूप से गुण हानि असंख्यात गुणी हानि रूप से परिणमा कर पूर्व स्पर्धक स्वरूप ही होकर प्रवृत्त होती हुई क्या कहते चाहे। अभी पहले क्या हुआ था, ये जो शक्ति को परिस्पंदन रूप शक्ति को उसने बहुत समेटा था, बहुत कम कर दिया था, फिर भी वो किस रूप से थी, तो पूर्व स्पर्धक रूप से। ये स्पर्धक किसमें लगाना, योग शक्ति में लगाना। इस समय उससे भी अच्छी तरह अपवर्तना करके अपूर्व स्पर्धक रूप से परिणमाता है, यानी योग की शक्ति इतनी हीन हो जाएगी, अभी तक ऐसी नहीं थी तो अपूर्व स्पर्धक कहेंगे। इस क्रिया की अपूर्व स्पर्धक करण संज्ञा है। सूक्ष्म हाँ, उसके बाद हाँ हाँ अभी सूक्ष्म कायोग में प्रवर्तक निरोध नहीं करते हुए करता हुआ इन करणों को करता है, यानी वो क्या करता है सूक्ष्म कायोग में से, अभी वो नष्ट किस प्रकार से होगा, पूर्व स्पर्धक रूप था योग, वो अभी अपूर्व स्पर्धक रूप करता है, ये बात है। अब इस करण की प्ररूपणा करने के लिए यहाँ पर सर्वप्रथम पूर्व स्पर्धकों की जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण रचना करनी चाहिए। ये पूर्व स्पर्धक कितने होते हैं, असंख्यात होते हैं, तो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग उसका प्रमाण। ऐसा करने पर सूक्ष्म निगोद जीव के जघन्य स्थान से संबंध रखने वाले स्पर्धकों से ये स्पर्धक असंख्यात गुणे हीन होकर अवस्थित है। ये जो उसने सूक्ष्म काय किया था, योग किया था, वो था तो स्पर्धक रूप से, फिर भी वो सूक्ष्म निगोद का जितना था उससे भी असंख्यात गुणा हीन था, अन्यथा उससे ने सूक्ष्म निगोद जीव के जघन्य स्थान संबंधी स्पर्धकों से इसका यानी संयोग केवली के अपूर्व स्पर्धकों का सूक्ष्मपना नहीं बन सकता। इस संयोग केवली में अंत में उन्होंने अपूर्व स्पर्धक किए, इतना योग कभी भी आज हीन नहीं था ऐसा योग बना दिया। इस प्रकार स्थापित इन पूर्व स्पर्धकों के नीचे असंख्यात गुणहानि रूप अपकर्षित कर यानी योग को घटाकर अपूर्व स्पर्धकों की रचना करते हुए योग निरोध करने वाले इस सहयोगी जिनके सहयोग केवली जिनके प्ररूपणा प्रबंध को अगले सूत्र के अनुसार बतला देते। ये बातें तो लब्धि सार में भी है। कहते आदिवगणाएं अविभाग परिच्छेदा छेदा नाम है क्या वो संख्या विभाग मुक्त कर देती छेदा नाम होना चाहिए ना पीछे का सूत्र देखें 166 208 पेज पर आदि वर्गण विभाग परिचय नाम परिच्छेदानम नाम बाण वाला नाम छेदानम मिला देखो 208 पेज पर वो दूसरा पैराग्राफ तीसरा बड़ा पैराग्राफ नीचे का पहले लाइन में लास्ट में आदि वगणाए अविभाग परिच्छेदान संख्य यदि भाग मोकटदि वो बाण वाला न है वहां वो रह गया है प्रिंट हुआ अस्पष्ट हो गया है बीच में तो कहते योग निरोध करने वाला यह संयोग केवली जिन जीव पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा के अभी जैसे हम कर्मों में वर्गणा या अनुभागों में जो वर्गणा स्पर्धक बताते हैं यह योग में समझ ये इतने जो प्रदेश है जीव के अलग अलग प्रदेश समान योग वाले फिर दूसरी लाइन कहेंगे वो भी समान योग वाले परंतु इसमें ज्यादा योग है इसमें और ज्यादा है इसमें और ज्यादा है जीव के जितने असंख्यात प्रदेश है वो सब इसमें इस तरह से रचना करेंगे तो ऐसे अनेक वर्गणा फिर उसके वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक वगैरह सब बातें आएगी अब क्या होगा इनका अविभाग प्रतिच्छेद इतना घटता है कि इससे भी नीचे अपूर्व स्पर्धकों की रचना होती है ये बात यहाँ बताना चाहते हैं तो यहाँ कहते हैं कि पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा ये पहली वर्गणा पूर्व स्पर्धकों की पहली वर्गणा जिसमें मिनिमम पॉसिबल योग था कहते उससे भी उसके अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है अब अपकर्षण करके क्या करता है वो अब ये बताएंगे देखो अभी जीव प्रदेशों का अपकर्षण करता है इसका अर्थ क्या है उन प्रदेशों में जितनी योग की शक्ति थी उसको घटाता है जितने प्रदेशों में घटाता है ना हम कहेंगे उसके प्रदेश नीचे आए प्रदेश तो क्या प्रदेश है जहां पहां वहां स्थित है प्रदेश तो उदय उधर नहीं उनके अविभाग प्रतिच्छेद उनकी योग शक्ति घटेगी आत्म प्रदेशों की योग शक्ति घटेगी जैसे हम कर्म कहते ना कर्म नीचे आए कर्म अपकर्षण हुए वहां भी ऐसा ही उनकी उतनी शक्ति कम हो जाती है यहाँ भी जीव प्रदेशों का अपकर्षण होता है ना इतने इतने प्रदेशों में पहले अनुभाग कम होगा इन्हें इसका योग का फिर इन्हें योग की बात कर रहे हैं योग की बात चल रही तो कहते हैं कि यहाँ पर जितने वर्गणा पहली वर्गणा यानी मिनिमम योग था उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण जो परमाणु है उसका योग घटेगा नीचे हो जाएगा तो यहाँ कहते हैं पूर्व स्पर्धकों से जीव प्रदेशों का आकर्षण करता अभी प्रदेशों को कहाँ नीचे ऊपर नहीं करता है उन प्रदेशों की योग शक्तिहीन होगी जो प्रदेश हमने इस तरह से वर्गणा की रचना दिखाई थी उसमें वर्गणा भी है स्पर्धक है सब है सभी में से थोड़े थोड़े जीव प्रदेशों का प्रत्येक जो अपना अपना है अनु योग की शक्ति कम होगी तो उसको कहेंगे इसका आकर्षण किया और यहाँ पर ये नई रचना हुई ये दिखाने के लिए ये सब किसमें घटित करे जीव के प्रदेशों का आत्म प्रदेशों का तो उसको कहते हैं आदि वर्ग फिर पढ़ती मैं इसको पूर्व स्पर्धकों से जीव प्रदेशों का आकर्षण करके अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता हुआ जैसे हमने अनुभाग में देखा था अब ये जीव प्रदेश में वही कथन तो वैसा ही होगा उसको भी अपूर्व स्पर्धक करेंगे करता हुआ पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों का असंख्यात वे भाग रूप से अपकर्षण करता है इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है कर्मों में जब हम कहते तो उसको तो अनुभाग में अनंत वह बात ऐसा बताते थे यहाँ तो असंख्यात पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों से यहाँ जो विभाग प्रतिच्छेद आदि बताए जा रहे हैं वो सब योग की ही बात चल रही है यहाँ पर, यहाँ कर्म की कुछ बात नहीं हो रही है। असंख्यात गुणहीन अविभाग प्रतिच्छेद रूप से जीव प्रदेशों का प्रश्न करके अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है, ये उक्त कथन का तात्पर्य। यानी इतने इतने जीव प्रदेशों का अनुभव योगों का इससे भी घट जाता है, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि अपूर्व स्पर्धकों की अंतिम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों में पूर्व स्पर्धकों की आदि वर्गणा से असंख्यात गुणहानि का नियम देखा जाता है। वर्गणा वर्गणा किसको कहते हैं, प्रति वर्गणा, तो इसमें एक एक का डिफरेंस था उसको वर्गणा कहा था हमने, एक वर्गणा दूसरी वर्गणा, एक एक योग का एक एक अविभाग प्रतिच्छेद का डिफरेंस था। अब यहाँ जो नीचे अभी रचना होगी तो यहाँ जो कुछ बनी वर्गणा है तो कहते यहाँ पर अंतिम में जितना योग है उससे असंख्यात गुणा इस पूर्व स्पर्धक की आगली वर्गणा में योग शक्ति, यानी योग इतना घटाया उन्होंने। हमें ऐसे इमेजिन कर, पहले हम कर्म पर इमेजिन करते थे, अभी जीव के प्रदेशों को वर्गणा कहा। यहाँ पर असंख्यात गुणहानि का भागहार पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, यानी ये जो नीचे की है उससे पूर्व के स्पर्धक की आदि वर्गणा पल्ले के असंख्यात वे भाग गुणा होती है, इतना ज्यादा है उसमें। ये पहली पूर्व स्पर्धक की जघन्य वर्गणा, अभी तक मिनिमम इतना योग किसी प्रदेश में था, अभी घट गया, असंख्यातवा भाग हो गया, कितने गुणाहीन हुआ तो असंख्यात गुणाहीन हुआ, तो कौन सा असंख्यातवा लेना, पल्ले के असंख्यात वे भाग वाला असंख्यात, उतना ही कम हो गया, उतना हीन हो गया। यहाँ पर ये तो हो गया, उसका भागार का प्रमाण कितना है, पल्लवम के असंख्यात भाग। जीव प्रदेशानम च असंख्येज यदि भागम उपकट दधि, और वह जीव प्रदेशों के असंख्यात वे भाग का अपकर्षण करता है। पहले तो अविभाग प्रतिच्छेदों का अपकर्षण करता है कहा, अब जीव प्रदेशों का, इतने जीव प्रदेशों में वो अनुभाग यानी योग कम हो जाता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, पूर्व स्पर्धक की सब वर्गणाओं से जीव प्रदेशों के असंख्यात्वे का भाग का असंख्य यदि भागम उपकटना, असंख्यात्वे भाग का करना, अपकर्षण भागार रूप प्रतिभाग से अपकर्षण करके, यानी कितने प्रदेशों का अनुभव घटता है, योग घटता है, तो कहते यहाँ जितने थे उसको कौन से असंख्या से भाग देना, तो अपकर्षण भागारूप असंख्या से, तो इतने जीव प्रदेशों का योग घटेगा प्रतिभाग से अपकर्षण करके पूर्वोक्त अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति रूप से परिणमाकर। पूर्वोक्त यानी अभी जो बताया था ना, इतना हीन अनुभाग रूप योग इतना घटकर उन जीव प्रदेशों में इतना कम योग हो जाएगा, पहले ज्यादा था अब कम हो जाएगा, इसको कहेंगे अपूर्व स्पर्धक बने। उन अपूर्व स्पर्धकों की रचना करता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। और इस प्रकार अपकर्षित किए गए जीव प्रदेशों का अपूर्व स्पर्धकों में निषेक विन्यास का क्रम कहते हैं। निषेक विन्यास यानी अभी जो एक एक समय की बात होती है, समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो जीव के प्रदेश है उनको एक एक लाइन में बताएंगे हम, उसको कहेंगे निषेक की रचना, निषेक विन्यास। निषेक की रचना कैसी होगी, तो इसके नीचे इस तरह से होगी, वो कहेंगे जैसे कर्म में देखते हो वैसे यहाँ योग में हो जाता है, कल देखेंगे इसको यथा के आगे जावा।